नमस्कार भारत, 4 अगस्त शनिवार, मैं हूं आदर्श राठौर। जेट एयरवेज में आर्थिक संकट की खबरों के बीच जानकारों ने जताई आशंका, भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर है खतरा।
जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इन कंपनियों को तकलीफ होने लगती है।
छत्तीसगढ़ में खदानों के प्रभावितों के फंड से करोड़ों की रकम दूसरे कामों में खर्च, बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई कांग्रेस।
ऐसी योजनाओं पर खर्च किया गया जिसका प्रभावितों को कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि सहलों की और सौंदर्यकरण।
सुनाएंगे, युगांडा के तानाशाह ने एक सपने के आधार पर कैसे देश से निकाल दिए थे 60,000 एशियाई।
सब छोड़ के जाना पड़ा और गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शन इश्यू नहीं की थी कि वो क्या ले जा सकते क्या नहीं ले जा सकते।
सुनेंगे विशेष श्रृंखला कहानियां चीन की पहली कड़ी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
विश्व समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कांगो देश खतरे में है क्योंकि इबोला वायरस फिर से यहां लौट आया है। WHO ने बताया कि इसकी शुरुआत एक 65 साल की महिला की मौत से हुई। इस महिला को सुरक्षित तरह से ना दफनाने की वजह से उसके 7 रिश्तेदार भी इबोला की चपेट में आने से मर गए। अब तक 20 लोग यहां इबोला का शिकार हुए हैं, लेकिन फिलहाल इसके पूरे विश्व में फैलने की आशंका कम जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस साल के पहले 7 महीनों के अंदर तकरीबन 1500 लोगों की मौत भूमध्य सागर पार करने के दौरान हुई है। सिर्फ जून और जुलाई के महीने में ही 850 से ज्यादा लोगों की मौत डूबने से हो गई। संयुक्त राष्ट्र की रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR का कहना है कि सागर को पार करना अब बहुत खतरनाक हो गया है। एजेंसी ने बताया कि मानव तस्कर रिफ्यूजियों को अफ्रीकी तटों से असुरक्षित नावों में भेज देते हैं। फरहान हक संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया। सिर्फ जून और जुलाई में ही 850 मौतें होने के बाद भूमध्य सागर दुनिया में सबसे खतरनाक और जानलेवा समुद्र हो गया है। UNHCR की चिंता ये है कि पिछले सालों की अपेक्षा यूरोपीय तटों पर आने वाले प्रवासी तो कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मृत्यु दर बढ़ रहा है। इस रास्ते पर पड़ने वाले देशों की सरकार और अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि वे मानव तस्करों के नेटवर्क को खत्म करें। फरहान हक के शब्द। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में एमरसन मनांगागुआ को जीत तो मिली, लेकिन विपक्षी नेता नेल्सन चमिसा हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निर्वाचित राष्ट्रपति मनांगागुआ पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए। चमिसा ने कहा कि उनके पार्टी दफ्तर पर छापे भी सबूत नष्ट करने के लिए मरवाए गए। उन्होंने जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग की भी अपना काम ठीक से ना करने के लिए आलोचना की और कहा कि उनकी पार्टी के पास सबूत हैं कि चुनावों में गड़बड़ी की गई है। उन्होंने कहा,
There is considerable eyewitness video evidence.
बहुत से चश्मदीदों के पास वीडियो हैं जिससे पता चल रहा है कि कुछ बैलेट बक्से खुले ट्रकों में रखे गए थे, ये सबूत वक्त आने पर दिखाए जाएंगे। इन वीडियो से पता चलता है कि ये बैलेट बक्से ना तो सील किए गए थे और इनमें छेड़छाड़ की पूरी संभावना थी, ना ही इन बक्सों के साथ जरूरी V11 फॉर्म लगाए गए थे। जिम्बाब्वे के विपक्षी नेता नेल्सन चमिसा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग ने कहा है कि वो राष्ट्रपति चुनाव की पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगा। अमेरिका ने इस वादे को लेकर जिम्बाब्वे के चुनाव आयोग की तारीफ की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने जिम्बाब्वे के नेताओं से गुजारिश की है कि जीतने वाले उदारता दिखाएं और हारने वाले गरिमा बनाए रखें। डेनमार्क में एक महिला को नकाब पहनने पर जुर्माना लगाया गया है। दरअसल बुधवार से ही डेनमार्क में नकाब प्रतिबंधित हो गया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक 28 साल की महिला पर जुर्माना लगाया गया जब उसका झगड़ा एक महिला से हो रहा था जो उसका नकाब खींचने की कोशिश कर रही थी। इस साल की शुरुआत में ही डेनमार्क की संसद ने ये कानून बनाया था। हालांकि कानून में नकाब या बुरका शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके मुताबिक कोई भी सार्वजनिक जगह पर अपना चेहरा ढकेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस कानून के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन भी हुए। अमेरिका की खुफिया जांचकर्ताओं ने एक रूसी महिला जासूस का पता लगाया है जो मास्को में अमरीकी दूतावास में 10 साल काम करती रही, लेकिन किसी को भी उसके जासूस होने की भनक तक नहीं लग पाई। द गार्जियन अखबार के मुताबिक इस महिला को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने नौकरी दी थी और इस महिला की पहुंच सीक्रेट सर्विस में बहुत अंदर तक थी। 2 साल पहले ही ये जासूस महिला शक के घेरे में आई। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श राठौर। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो जेट एयरवेज ने अपने पायलटों से कहा है कि कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही है और इसलिए उसे अपने खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। कंपनी ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों से कहा है कि उसके पास 2 महीने तक कंपनी चलाने का ही पैसा है। हालांकि कंपनी ने इस तरह की खबरों को गलत बताया है, लेकिन जानकार ये मानते हैं कि भारत की पूरी एविएशन इंडस्ट्री ही खतरे में है। कैसे, जानने के लिए सुनिए बीबीसी संवाददाता मानसी दास की रिपोर्ट।
मीडिया में आ रही खबरें यही बता रही हैं कि जेट एयरवेज नुकसान में है और आने वाले 2 महीने ये साबित करेंगे कि कंपनी का भविष्य क्या होगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय दुबे ने मीडिया में आ रही खबरों को खारिज किया है। बीबीसी को भेजे एक बयान में उन्होंने कहा है कि कंपनी अपना मुनाफा बढ़ाने और खर्च में कटौती करने की कोशिश कर रही है। कंपनी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, कर्मचारियों की तनख्वाह, रखरखाव में होने वाले अपने खर्च को कम कर रही है। मौजूदा हालात के लिए कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते कच्चे तेल की कीमतों और लगातार गिरती भारतीय मुद्रा को जिम्मेदार मानती है। वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार आशुतोष सिन्हा बताते हैं कि जेट एयरवेज भारत की सबसे बेहतरीन एयरलाइन कंपनी रही है और एक वक्त था जब अच्छे तरीके से चलाए जाने के लिए कई देशों में इसकी मिसाल दी जाती थी, लेकिन 2016 तक मुनाफा दिखाने वाली कंपनी 2018 में अचानक ही नुकसान की कगार पर कैसे पहुंच गई। आशुतोष सिन्हा बताते हैं,
जेट फ्यूल इस्तेमाल करती हैं एयरलाइन कंपनीज, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसे कहते हैं ATF, 40-50% उनके कॉस्ट का हिस्सा ये फ्यूल कॉस्ट होता है। जैसे ही कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इन कंपनियों को तकलीफ होने लगती है।
एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन मानते हैं कि 2008 के बाद से एविएशन इंडस्ट्री को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फिलहाल जेट एयरवेज की माली स्थिति इतनी भी बुरी नहीं कि हम उसे बंद होने की कगार पर मान लें।
पिछले एक साल में कई चीजें इंडस्ट्री के खिलाफ हुई हैं। सबसे पहली बात, फ्यूल के दाम बहुत बढ़ गए हैं और खासतौर पर हिंदुस्तान में तो हम लोग दुनिया में सबसे महंगा फ्यूल खरीदते हैं, तो फ्यूल कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत बढ़ गई है। दूसरा, जो रुपी का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो ये एयरलाइंस जो भी हैं उनकी जो मेन आउटगो है खासतौर पर जहाज के खरीदने का, जहाज लोन है, जहाज पे कलर जितने इंजीनियरिंग स्पेयर्स हैं, तो विदेशी पायलट आते हैं उनकी कॉस्ट से, तो करीब 40% खर्चा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में होता है।
हर्षवर्धन बताते हैं कि इंडस्ट्री में लगातार कंपटीशन बढ़ रहा है और कंपनी टिकटों के दाम अधिक बढ़ा नहीं सकती, लेकिन हाल के दौर को देखें तो किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या, जिन पर बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसे बिना चुकाए वो विदेश चले गए हैं और जल्द पैसे वापस मिलेंगे इसकी सूरत नजर नहीं आती। भारत के महाराजा यानी एयर इंडिया फिलहाल 50000 करोड़ के कर्ज में डूबी है। सरकार इसे बचाना तो चाहती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा। सस्ती विमान सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो की स्थिति भी कुछ खास बेहतर नहीं है। ऐसे में अब जेट एयरवेज के खर्च में कटौती की खबर एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर मंडराते खतरे की घंटी की तरह है। आशुतोष सिन्हा के शब्दों में,
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन जो है इंडिगो, उसका करीब 40% मार्केट शेयर है, उसके भी प्रॉफिट पर अब सवालिया निशान है। उसे दिक्कत हो रही है तो छोटे एयरलाइन का आप समझ सकते हैं उनका क्या हाल होगा।
मानसी दास, बीबीसी, दिल्ली।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि कोयले और लौह अयस्क के खनन से प्रभावित लोगों के विकास के लिए बनी जिला खनिज निधि के करोड़ों रुपए दूसरे कामों में खर्च कर दिए गए हैं। इस साल मई तक 3000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम इस मद में जमा की गई थी, लेकिन इनमें से अधिकांश रुपए शहरों के सुंदरीकरण और भवन निर्माण में लगा दिए गए हैं। इस मामले को लेकर राज्य में राजनीति गर्मा गई है। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में इन दिनों जिला खनिज निधि के पैसों को कथित रूप से मनमाने तरीके से खर्च किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सितंबर 2015 में एक अधिनियम के तहत देश के किसी भी जिले में काम करने वाली माइनिंग कंपनी को अपने खनन नीलामी की 10% राशि जिला खनिज निधि यानी DMF में जमा करने का नियम लागू किया गया था। इस धनराशि का उपयोग खनन प्रक्रिया से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के विकास हेतु किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला कहते हैं,
डीएमएफ का मूल मकसद था खनन प्रभावित क्षेत्रों वहां के निवासियों के लिए बुनियादी सुविधाएं शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल को उपलब्ध करवाना, इस तरीके की योजनाओं बनाना जिससे कि प्रभावितों के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन हो।
छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो खनन कंपनियों ने इस साल मई तक 3,341 करोड़ रुपए जिला खनिज निधि में जमा कराए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश पैसे का उपयोग प्रभावितों और खनन वाले इलाके में करने के बजाय शहरों में किया गया। जैसे उदाहरण के लिए कोरबा शहर में 43 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बना दी गई। इसी तरह 215 करोड़ रुपए कन्वेंशन सेंटर बनाने में खर्च कर दिए गए। आलोक शुक्ला कहते हैं,
ऐसी योजनाओं पर खर्च किया गया जिसका प्रभावितों को कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि शहरों का सौंदर्यीकरण। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरी योजना में तय करने की भूमिका में प्रभावितों की कहीं कोई जगह नहीं है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल का कहना है कि माइनिंग वाले अधिकांश इलाके आदिवासी बहुल हैं, जहां ग्राम सभा को 5वीं अनुसूची में विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने दिल्ली की संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक शोध के हवाले से दावा किया कि सरकार जिला खनिज निधि के पैसों को खर्च करते समय सारे नियम कानून को ताक पर रख रही है।
अनुसूची 5 का जो नियम है, तो सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, फिर जिला में वार्षिक योजना बननी चाहिए और उसके बाद वहाँ निर्माण कार्य होना चाहिए। तीनों बातों का अभाव डीएमएफ के स्वीकृत कार्यों में दिखाई पड़ता है।
कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हक में जंगल सत्याग्रह भी शुरू करने वाली है, लेकिन राज्य सरकार में कई विभागों के मंत्री राजेश मूणत का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी इस साल होने वाले चुनाव के कारण बेबुनियाद आरोप लगा रही है।
चुनाव आ गया है तो कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी अपनी चीजों को लेकर के खाली सत्याग्रह करना था तो आदिवासी भाइयों को जो 50 साल तक तुम राजनीति उनके आधार पर कियो, तो कहीं उनके मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी काम की होती?
मंत्री की आरोप लगाने वाले मुद्रा में दी गई सफाई के बाद ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस या दूसरे सामाजिक संगठन इस मुद्दे पर चुप बैठेंगे। कुछ सामाजिक संगठन इस मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, और चुनावी साल है इसलिए आने वाले कुछ महीनों तक तो यह मुद्दा गर्माया ही रहेगा। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
महात्मा गांधी कभी चीन नहीं गए, लेकिन ब्रितानी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन में उनकी भूमिका पर चीन में कई लोगों की नजर बनी हुई थी। ये लोग गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे। बीबीसी संवाददाता विनीत खरे चीन के आनहुई प्रांत में एक ऐसी महिला से मिले जिन्होंने न सिर्फ गांधी की किताबों और लेखों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है, बल्कि वो खुद गांधी के सिद्धांतों पर जीवन जीने की कोशिश कर रही है।
शहर की भीड़, कंक्रीट के जंगलों से दूर कुदरत की गोद में बसा हुआंग थियान गांव, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर 57 वर्षीय वू पेई ने यहीं रहने का फैसला किया। वू पेई कहती हैं,
मैं महात्मा गांधी की तरह सादगी से जीवन जीती हूँ। मैं एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ और मैं शाकाहारी भी हूँ।
फिजिक्स में मास्टर्स वू पेई की जिंदगी साल 2002 में उस दिन बदली जब राजधानी पेचिंग में उन्होंने एक भारतीय वक्ता का भाषण सुना।
उन्होंने गांधी के आदर्शों के बारे में बताया और कहा कि गांधी कहते थे कि सच्चाई को सिर्फ काव्यात्मक तरीके से ही व्यक्त किया जा सकता है। इन बातों ने हम पर गहरा प्रभाव डाला और हमने गांधी के बारे में और जानने का निर्णय किया।
गांधी के बारे में पढ़ने के अलावा पिछले साल उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की ताकि बच्चों को कुदरत के नजदीक लाया जा सके।
मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि वो हर जीव को प्यार करें, वो गांव के लिए अच्छा काम करें, कूड़ा इकट्ठा करें, अगर लोग अकेले हैं तो वो उनके घरों में उनसे मिलने जाएं।
लेकिन चीन में कई लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं। वू पेई कहती हैं,
एक दिन जब मैंने अहिंसा और गांधी के बारे में बात करनी शुरू की तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत आदर्शवादी हूँ और चीन में ऐसा नहीं हो सकता। चीन में गांधी के बारे में बहुत कम जानकारी है। भारत की तरह चीन में भी कई लोग अहिंसा पर गांधी से सहमत नहीं हैं।
वु पे ने अपना जीवन स्कूल को समर्पित कर दिया है, लेकिन उनका सपना है कि वो एक दिन महात्मा गांधी के जन्म स्थान भारत जरूर आए। विनीत खरे, बीबीसी, हुआंगथियान गांव, चीन।
चीन के लोगों पर महात्मा गांधी के असर की इस रिपोर्ट को रविवार को दिन भर कार्यक्रम में फिर से प्रसारित किया जाएगा। चीन से विनीत खरे की विशेष श्रृंखला कहानियां चीन की आप इस पूरे हफ्ते सुनेंगे। और आइए अब सुनते हैं कि आज शाम 7:30 बजे प्रसारित होने वाले बीबीसी इंडिया बोल का विषय क्या है।
40 लाख लोगों को नागरिकता रजिस्टर से खारिज किए जाने का क्या अर्थ है, क्या फायदे और क्या खतरे हैं ऐसी कवायद के, इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर होगी चर्चा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 4 अगस्त शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। सर्वप्रिया, क्या कहते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार?
आदर्श आरक्षण तो एक ऐसा विषय है जो सरकार, नेताओं और जनता के लिए हमेशा ही मुद्दा बना रहता है, और फिलहाल सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। 5 जजों की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा भी शामिल हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य ऐसा कोई डेटा नहीं लाए हैं जिससे पता चल सके कि नौकरियों में SC/ST का प्रतिनिधित्व कम है। इस पर केंद्र ने कहा कि ये वर्ग 1000 साल से उत्पीड़न झेल रहा है, तो प्रमोशन में 23% आरक्षण नहीं दिया तो आरक्षण का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मतलब जो केंद्र है वो प्रमोशन में आरक्षण के लिए बैटिंग कर रहा है। दरअसल ये केस ये फैसला करने के लिए है कि 2006 में एम नागराज केस में आया फैसला पुनर्विचार के लिए नई पीठ को भेजा जाए या नहीं। इस पुराने केस में कोर्ट में कहा था कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC/ST के प्रमोशन पर लागू नहीं होता, उन्हें प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है बशर्ते सरकार को लगे कि नौकरी में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
जी।
अब अगली सुनवाई इस केस में 16 अगस्त को होगी। इसके अलावा जो खबर है, मुजफ्फर पुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले में जो एक संदिग्ध महिला मधु कुमारी का नाम आया है और जो फिलहाल फरार भी है, उसे जिला महिला सम्मान के लिए नामांकित किया गया था। ये महिला खुद को सोशल वर्कर बताती है और मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर के NGO में काम भी करती थी
जी।
इसके अलावा एक और खबर है जो हम PNB घोटाले को लेकर, जिसमें जो कैरिबियाई द्वीप एंटीगुआ है वो कह रहा है कि जो भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी हैं, उन्होंने 2017 में भारत से क्लीन चिट मिलने के बाद ही नागरिकता दी थी। एंटीगुआ ये दावा कर रहा है कि भारत ने क्लीन चिट दी थी इसलिए उन्होंने नागरिकता दे दी। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि मुंबई के रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में मेहुल चौकसी को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया गया था। तो और जो एंटीगुआ ने ये कहा है कि जो भारतीय शेयर बाजार की नियामक संस्था SEBI है, उसने भी उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दी थी तो उन्होंने इसलिए उनको नागरिकता दे दी। इसके अलावा एक और खबर है दैनिक जागरण की कि सोशल मीडिया की अब निगरानी नहीं करेगी सरकार। इसमें बात यह है कि देश की जो सर्विलांस स्टेट बनने जैसी सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए प्रस्तावित सोशल मीडिया हब बनाने के फैसले से कदम वापस खींच लिए हैं
जी।
ये आज के सब खबर थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सरप्रिया। आज से ठीक 46 साल पहले 4 अगस्त 1972 को युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने वहां रह रहे 60,000 एशियाइयों को अचानक देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। युगांडा छोड़ने के लिए इन लोगों को सिर्फ 90 दिनों का समय दिया गया था। वो अपने साथ सिर्फ £55 ले जा सकते थे। उन्हें अपनी संपत्ति के लिए कोई मुआवजा भी नहीं मिला। कैसे थे उस समय के हालात, जानिए रिहान फजल से विवेचना में।
I have already decided that all Asian who is a British citizen will must leave Uganda. I think Uganda will benefit if Asian are out of Uganda.
ये आवाज है 70 के दशक में युगांडा के तानाशाह रहे इदी अमीन की, जो ये घोषणा कर रहे थे कि युगांडा में वर्षों से रह रहे ब्रिटिश पासपोर्ट धारी एशियाइयों को 90 दिन के अंदर युगांडा छोड़ देना चाहिए। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले अमीन को हाल के विश्व इतिहास के सबसे निर्दयी और क्रूर तानाशाहों में गिना जाता है। ایک زمانے میں یوگانڈا کے ہیوی ویٹ چیمپئن رہے ایدی امین ملٹن اوبوٹے کو ہٹا کر ستا میں آئے تھے۔ اپنے 8 ورش کے شاسن کال میں انہوں نے کرورتا کے جتنے پرتیمان گڑھے، آدھونک اتہاس میں اس کے ادھارن بہت کم ہی ملتے ہیں۔ 4 اگست 1972 کو ایدی امین کو اچانک ایک سپنا آیا اور ٹورورو میں سینک ادھیکاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ وہ سارے ایشیائیوں کو ترنت اپنے دیش سے نکال باہر کریں۔
ایشیائیوں نے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر رکھا ہے اور انہوں نے یوگانڈائی افریقیوں کے ساتھ ملنے جلنے کی کوئی کوشش نہیں کی ہے۔ ان کی سب سے زیادہ روچی یوگانڈا کی ارتھ ویوستھا کا شوشن کرنے میں رہی ہے۔ انہوں نے گائے کو دوہا تو ہے لیکن اسے بھوجن کھلانے کی تکلیف گوارا نہیں کی ہے۔
شروع میں امین کی اس گھوشنا کو ایشیائی لوگوں نے گمبھیرتا سے نہیں لیا، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں انہیں پتا چل گیا کہ امین واقعی انہیں باہر نکالنے پر اتارو تھے۔ بھارت سرکار نے استھتی کا جائزہ لینے کے لیے بھارتی ودیش سیوا کے ایک ادھیکاری نرنجن دیسائی کو وہاں بھیجا۔ دیسائی یاد کرتے ہیں،
ماحول بہت خراب تھا، کافی پینک تھا، ڈسٹریس تھا، کیونکہ کافی لوگ تو یوگانڈا سے بھی باہر نہیں گئے تھے کبھی، اور کبھی ایسٹ افریقہ سے باہر نہیں گئے تھے، اور سڈنلی ان کو سب چھوڑ کے جانا پڑا، اور گورنمنٹ نے کوئی بھی انسٹرکشن ایشو نہیں کی تھی کہ وہ کیا لے جا سکتے کیا نہیں لے جا سکتے، مگر جو جو سمارٹ لوگ تھے انہوں نے کافی طریقے اپنائے اور کافی اپنا پراپرٹی اور پیسے فنڈز باہر نکال دیا۔
امین کا یہ فیصلہ اتنا اچانک تھا کہ یوگانڈا کی سرکار بھی اس کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بہت سے ایشیائی لوگوں کو اپنی دکانیں اور گھر ایسے ہی کھلے چھوڑ کر آنا پڑا تھا، انہیں اپنا گھر کا سامان بیچنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ امیر ایشیائیوں نے اپنے دھن کو خرچ کرنے کا نایاب طریقہ نکالا۔
جو لوگ بہت پیسے والے تھے انہوں نے سارے فیملی کے لیے راؤنڈ دا ورلڈ ٹکٹس لے لی فرسٹ کلاس کی، ساتھ میں وہ ہوٹل بکنگز اور ایم سی او کی طرح لے لیا، کیونکہ وہ بعد میں ریفنڈ کر سکتے ہیں، تو ایسے پیسے نکال دیے۔ کسی نے ڈائریکٹلی فنڈ ٹرانسفر کر دیے، کسی لوگوں نے کار کے اندر جویلری اور پیسے سب نکال کر کینیا چلے گئے، اور کسی لوگوں نے فوج سے پارسل کر دیا۔ فوج سروس اچھی تھی کہ کافی لوگ کو جویلری آپ کو مل گئی لندن میں، اور کوئی لوگ ایسے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ واپس آ جائیں گے، تو انہوں نے اپنی جویلری اپنے گارڈن میں چھپا دی، وہ تو چلی گئی، مگر کافی لوگوں نے بینک آف بروڈا میں سیف ڈپازٹ والٹ میں رکھ دی تھی، اور یہ بینک نے بہت سنبھال کر رکھا۔ اور جب موسیوینی گورنمنٹ آئی پاور میں تب کافی لوگ آئے اور جویلری لے گئے واپس۔
کیتا واٹس کو وہ دن ابھی تک یاد ہے جب وہ لندن جانے کے لیے انتبے ہوائی اڈے پہنچی تھی۔
ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے صرف 55 پاؤنڈ دیے گئے تھے۔ جب ہم ہوائی اڈے پہنچے تو لوگوں کے سوٹ کیس کھول کھول کر دیکھے جا رہے تھے، ان کی ہر چیز باہر نکال کر پھینکی جا رہی تھی تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اس میں سونا یا پیسے تو چھپے نہیں رہ گئے ہیں۔ پتہ نہیں کس وجہ سے میرے ماتا پتا نے میری انگلی میں ایک انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ہم سے کہا گیا کہ میں انگوٹھی اتار کر انہیں دے دوں۔ انگوٹھی اتنی کسی تھی کہ میری انگلی سے اتر ہی نہیں رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے اسے کاٹ کر میری انگلی سے الگ کیا۔ سب سے خطرناک چیز یہ تھی کہ جب انگوٹھی کو کاٹا جا رہا تھا تو آٹومیٹک ہتھیار لیے سینک ہمیں گھیر کر کھڑے ہوئے تھے۔
میں نے نرنجن دیسائی سے پوچھا کہ ایشیائی لوگوں دوارا چھوڑی گئی بے پناہ سمپتی کا آخر ہوا کیا۔
گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، کسی آرمی والوں نے لے لیا، کسی منسٹر کے لیے، ایسے ہی کرپشن میں سب، عام آدمی تو کچھ ملا نہیں ہے، ان کو تو بیکاری ہو گئی، کیونکہ موسٹ پروڈکٹیو پارٹ آف دی اکانومی وہ دیش۔ یہ عجیب بات ہے، یہ جب مفت کی چیزیں ملتی تھی نا، یہ آرمی والے اس کو بولتے تھے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش اسی ٹائم لبریٹ ہوا تھا، تو جو بھی ایشین کی پراپرٹی مفت میں ملی اس کا نام ان لوگوں نے بنگلہ دیش رکھا تھا۔ سنائی پڑتا تھا ہم نے اتنا بنگلہ دیش کیا، ہم نے اتنا بنگلہ دیش کیا۔
اس پوری گھٹنا سے دنیا میں ایدی امین کی چھوی ایک نیم سن کی شاسک کے روپ میں پھیل گئی۔ ان کی کرورتا کی اور کہانیاں بھی باہری دنیا کو پتہ چلنے لگی۔ امین کے ایک پرانے نوکر موسز الوگا نے कीनिया भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिस पर आज के युग में विश्वास करना मुश्किल है। अमीन के समय में युगांडा में भारत के राजदूत रहे मदनजीत सिंह अपनी किताब कल्चर ऑफ द सेपुलक्रे इदी अमीन्स मॉन्स्टर रिजीम में लिखते हैं।
अलोगा ने बताया, अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ मुझे ही उसके अंदर घुसने की इजाजत थी और वो भी उसे साफ करने के लिए। अमीन की पांचवी बीवी सारा क्योलाबा को इस कमरे के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने मुझसे उस कमरे को खोलने के लिए कहा। मैं थोड़ा झिझका क्योंकि अमीन ने मुझे आदेश दिए थे कि उस कमरे में किसी को घुसने नहीं दिया जाए। लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और मुझे कुछ पैसे भी दिए तो मैंने उस कमरे की चाबी उन्हें सौंप दी। कमरे के अंदर दो रेफ्रिजरेटर रखे हुए थे। जब उन्होंने एक रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्लाकर बेहोश हो गईं। उसमें उनके एक पूर्व प्रेमी जीज गिटा का कटा हुआ सिर रखा था।
बहरहाल एशियाइयों को बाहर निकाले जाने के बाद युगांडा की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। जरूरी चीजों की भयानक कमी हो गई। कई उद्योग बंद हो गए। निकाले गए करीब 60,000 एशियाइयों में से अधिकतर को ब्रिटेन ने शरण दी।
सबसे ज्यादा नंबर ब्रिटेन में आए क्योंकि वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स थे। 23,000 और सो हमारे नेशनल थे कुछ 11,000। वो दूसरे कुछ ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए। कनाडा सरकार ने बहुत मदद की थी। कनाडा ने स्पेशल मिशन बनाया वहाँ कंपाला में और उन्होंने काफी लोग को इंटरव्यू किया और जो एलिजिबल थे उनको कनाडा का वीजा दे दिया और कनाडा गवर्नमेंट ने पैसेज भी फ्री दिया था उनको। कुछ फिर यूरोप चले गए, मगर जो भी चले गए उन्होंने काफी अच्छा सेटल कर दिया सब जगह। आपने देखा ब्रिटेन में तो उन्होंने सारी रिटेल इंडस्ट्री चेंज कर दी।
इस त्रासदी पर सबसे आश्चर्यजनक रवैया था भारत सरकार का। उन्होंने इसे युगांडा के आंतरिक मामले की तरह ट्रीट किया और अमीन प्रशासन के खिलाफ विश्व जनमत बनाने की कोई भी कोशिश नहीं की। नतीजा ये रहा कि लंबे समय तक पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला भारतीय समुदाय भारत से दूर चला गया और ये समझता रहा कि उनके मुश्किल समय में भारत ने उनका साथ नहीं दिया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की बात करें तो दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 110 रन बना लिए हैं। भारत जीत से अभी 84 रन दूर है। ऐसे में आज का मैच काफी रोमांचक रहने वाला है, आज का दिन काफी रोमांचक रहने वाला है। सुनिए बाकी के खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। दिन की शुरुआत बैडमिंटन के साथ। भारत की अग्रणी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी यानी साइना नेहवाल को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में शुक्रवार को निराशा हाथ लगी। वर्ल्ड नंबर 10 साइना नेहवाल एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में स्पेन की दिग्गज कैरोलिना मारिन से हारकर बाहर हो गईं। वहीं दूसरी तरफ भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी बी साई प्रणीत शुक्रवार को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार गए। भारत के अग्रणी बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत पहले ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही है अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच की सीरीज। इस श्रृंखला का पहला और दूसरा मुकाबला तो साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया, अब तीसरा मुकाबला होगा 5 अगस्त को पल्लीकेल में। इस श्रृंखला में पहले खेले जाएंगे 5 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच और फिर एक T20 मैच। जाने से पहले बात फुटबॉल की। 2018-2019 का प्रीमियर लीग का सीजन शुरू होगा 11 अगस्त से।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार सर्वप्रिया सांगवान से।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कांगो देश खतरे में है क्योंकि इबोला वायरस फिर से यहां लौट आया है। अब तक 20 लोग यहां इबोला का शिकार हुए हैं लेकिन फिलहाल इसके पूरे विश्व में फैलने की आशंका कम जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस साल के पहले 7 महीनों के अंदर तकरीबन 1,500 लोगों की मौत भूमध्य सागर पार करने के दौरान हुई है। सिर्फ जून और जुलाई के महीने में ही 850 से ज्यादा लोगों की मौत डूबने से हो गई। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति चुनावों में एमरसन मनंगागवा को जीत तो मिली लेकिन विपक्षी नेता नेल्सन चमिसा हार स्वीकारने को तैयार नहीं है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निर्वाचित राष्ट्रपति मनंगागवा पर चुनावों में धांधली करने के आरोप लगाए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे बीबीसी इंडिया बोल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।